بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، آج اپنے کاریکرم کا آرمبھ ہم سورہ ہود کی 110ویں سے لے کر 113ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ قاری ہیں حسین سبز علی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير۔ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم صدق اللہ العلی العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور نسندیہ ہم نے موسیٰ کو تورات پردان کی، کنتو اس میں مت بھید ہو گیا اور یدی کافروں کو سمے دینے کے سمبندھ میں آپ کے پالنہار کی پرمپرا پہلے سے نردھارت نہ ہوتی تو نشچت روپ سے اسی سنسار میں ان کے بیچ فیصلہ کر دیا جاتا، اور نسندیہ وہ لوگ گہرے سندیہ میں پڑے ہوئے ہیں، اور نشچت روپ سے آپ کا پالنہار ان کے کرموں کا بدلہ انہیں پورن روپ سے پردان کرے گا، اور نسندیہ وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ اس سے پورنتہ اوگت ہے۔ تو ہے پیغمبر، جیسا کہ آپ کو آدیش دیا گیا ہے، آپ اور آپ کے ساتھ ایشور کی اور آنے والے لوگ پرتیرودھ کریں اور ادنڈتا نہ کریں، کہ نسندیہ جو کچھ تم لوگ کرتے ہو ایشور اسے دیکھنے والا ہے، اور اتیاچاریوں پر بھروسہ نہ کرو کہ نرک کی آگ تمہیں اپنی چپیٹ میں لے لے گی، اور یہ جان لو کہ ایشور کے اترکت تمہارا کوئی سہائک نہیں ہے اور کسی کی اور سے تمہاری سہایتا نہیں کی جائے گی۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ آج گروار ہے، اکتوبر کی 28، ربیع الاول کی 21 اور رابان ماہ کی 6 تاریخ۔ کارکرموں میں ہم پہلے آپ کو وشو سماچار سنوائیں گے، پھر راجنیتک چرچا پیش کی جائے گی، اس کے بعد کارکرم ہوگا آج کی بات، اور اس سبھا کے انت میں آپ سنیں گے ہمارا ساپتاہک کارکرم سفل مہیلائیں۔ شروتاؤ، یہ تھی ہمارے آج کے کارکرموں کی روپ ریکھا۔ آپ کچھ ہی چھڑوں میں ریڈیو تہران سے وشو سماچار پیش کیے جائیں گے۔ یہ تہران ہے، اب آپ مریم مہردادی اور قائم رضوی سے وشو سماچار سنیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ ایران کا کہنا ہے کہ آئی آئی اے کو خفیہ جانکاریاں لیک نہیں کرنی چاہیے۔ حزب اللہ کا ماننا ہے کہ داعش آج بھی عراق کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ فلسطینی کھیتروں میں کالونی نرمان کا یورپی دیشوں نے ویروھ کیا ہے۔ طالبان کے نیتا نے وشو کے 14 دیشوں کے پرتنیدھیوں سے بھینٹ کر کے پرتیبندھ ہٹوانے کی مانگ کی ہے۔ اور اب آپ وستار سے سماچار سنیے۔
آئی اے ای اے کو ایران نے چیتاونی دیتے ہوئے کہا ہے کہ گوپنیے جانکاری لیک ہوئی تو اس کے گمبھیر پریڑام ہوں گے۔ ایران کی پرمانو ارجا سنستھا کے پروکتا نے کہا ہے کہ آئی اے ای اے نے ایران کی خفیہ جانکاری دوسروں کو لیک کرنا شروع کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسے جلد سے جلد سماپت کرنا ہوگا، انیتھا ایران آوشیک قدم اٹھائے گا۔ ایران کی پرمانو ارجا سنستھا کے پروکتا بہروز کمال وندی نے ایک انٹرویو میں انتراشٹریہ پرمانو ارجا ایجنسی آئی اے ای اے کی اور سے ایران کے پرمانو کارکرموں کی جانکاریوں کے لیک کیے جانے کی اور سنکیت کیا۔ انہوں نے کہا کہ آئی اے ای اے کبھی ایسی رپورٹیں جاری کرتا ہے جن سے کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جنہیں سامنے نہیں لانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی بڑا بدلاؤ ہوتا ہے تب ایسی رپورٹ جاری کی جاتی ہے۔ اسی طرح کسی دیش کی پرمانو پرودیوگکی گتیویدھیوں کی جانکاریوں کا لیک کرنا اور ان کا پرسار کرنا اسویکاری کاریہ ہے، جو بہت ہی درباگی پورن ہے۔ کمال وندی نے کہا کہ انتراشٹریہ پرمانو ارجا ایجنسی نے لمبے سمے سے ان سدھانتوں کا پالن نہیں کیا ہے۔
اسلامی گنتنتر ایران کے مانواधिकार آیوگ نے مانواधिकारों پر سنیکت راشٹر سنگھ کے وشیش دوت جاوید رحمان کی رپورٹ کو انوچت اور راجنیتی سے پریرت بتاتے ہوئے خارج کر دیا ہے۔ پراپت रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के मानवाधिकार आयोग ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि ईरान के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार आयोग के विशेष दूत जावेद रहमान की रिपोर्ट को असत्य पर आधारित अन्यायपूर्ण गैर पेशेवराना और राजनीति से प्रेरित बताते हुए उसे खारिज कर दिया और साथ ही उसकी निंदा भी की है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ईरान के संबंध में मानवाधिकार रिपोर्टर की नियुक्ति को मानवाधिकारों की धज्जा उड़ाने वाले कनाडा जैसे पश्चिमी देशों की साजिश बताया है। बयान में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र का कदम अनुचित और राजनीति से प्रेरित है। ईरान के मानवाधिकार आयोग के एक बयान में कहा गया है कि पश्चिमी देश जिनके मानवाधिकारों के संबंध में रिकॉर्ड काली सूचियों से भरे पड़े हैं आज वो ईरान पर सवाल उठा रहे हैं। आयोग ने अपने बयान में कहा कि जिन्होंने ईरान पर 8 वर्षों थोपे गए युद्ध में तानाशाह सद्दाम को हर तरह के हथियार दिए, यहाँ तक कि रासायनिक हथियारों को भी उसे दिया, उसके हर तरह की आर्थिक सहायता की, वहीं स्वयं कनाडा हजारों की संख्या में मासूम बच्चों को कब्रों में जिंदा दफन कर दिया। आज ऐसे देश खुद को मानवाधिकार का ठेकेदार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये हो सकता है कि जो खुले आम मानवाधिकारों की धज्जा उड़ाते हों वो मानवाधिकारों के ठेकेदार बन जाएं?
इराक के दियाला में हुए आतंकी हमलों पर हिजबुल्लाह ने संवेदना प्रकट की है। इराक के दियाला प्रांत के अल रिशाद गांव पर तकफीरी आतंकवादी गुट द्वारा हमला किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए हिजबुल्लाह ने हालिया दिनों में दियाला प्रांत पर हुए आतंकी हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की। उसने कहा है कि दाइश आज भी इराक के लिए सबसे गंभीर खतरा बना हुआ है। अलमनार टीवी चैनल की रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्लाह ने इराक के दियाला प्रांत में हाल के दिनों में एक के बाद एक हुए आतंकी हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की। हिजबुल्लाह के बयान में आया है कि जहां एक ओर दाइश इराक की शांति व स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है, वहीं उसका समर्थन करने वाले देश भी इस अवसर से फायदा उठाते हुए इराक की शांति व स्थिरता को लगातार नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। हिजबुल्लाह के बयान में कहा गया है कि इन जघन्य अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए ये वो समय है जब इराकी राष्ट्र पूरी एकता और एकजुटता के साथ दाइश के बचे खुचे तत्वों को सामने लाए और उन्हें हमेशा के लिए नष्ट कर दे।
ज़ायोनी शासन द्वारा फिलिस्तीनी क्षेत्रों में बनाई जाने वाली कॉलोनियों के निर्माण का यूरोपीय देशों ने कड़ा विरोध किया है। यूरोपीय देशों ने एक संयुक्त बयान जारी करके फिलिस्तीनी क्षेत्रों में बनाई जाने वाली ज़ायोनी बस्तियों के निर्माण को तत्काल रोकने की मांग की है। फार्स न्यूज़ के अनुसार जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने यूरोपीय संघ के 11 देशों के साथ मिलकर एक बयान जारी किया है जिसमें ज़ायोनी शासन से फिलिस्तीनी क्षेत्रों में बस्तियाँ बनाए जाने का खुलकर विरोध किया गया है। यूरोपीय देशों के इस संयुक्त बयान में कहा गया है कि इन कॉलोनियों का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध है। बुधवार को ज़ायोनी शासन की मीडिया में ये विषय सामने आया कि इसराइल में विकास परिषद ने फिलिस्तीनी क्षेत्रों में 3,144 नए घर बनाने की अनुमति दे दी है। अवैध ज़ायोनी शासन अधिक से अधिक फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आए दिन कॉलोनियों का निर्माण के काम को बढ़ाता जा रहा है।
इराक के एक प्रतिरोधक संगठन अन्नजबा के महासचिव ने बताया है कि इस्लामी प्रतिरोध के विरुद्ध बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार किया जा रहा है। शेख अकरम अलकाबी ने इस्लाम और मुसलमानों की नकारात्मक छवि पेश किए जाने के बारे में ये कहा कि ये काम अमरीका और ज़ायोनी शासन के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसराइल और उसके कुछ गुलाम क्षमा कीजिएगा उन्होंने बताया कि अमरीका और उसके कुछ गुलाम देश इराक के टुकड़े करना चाहते हैं। अकरम अलकाबी के अनुसार हमारा काम अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना है। उनका कहना था कि प्रतिरोध करने के कारण मीडिया में हमारी छवि को गलत रूप से पेश किया जा रहा है जबकि हम तकफीरी आतंकवादी गुट दाइश के मुकाबले में खड़े हुए हैं। इसके बावजूद अमरीकी युद्धक विमान हमारे ही लड़ाकों पर हमले करते रहते हैं।
आले सऊद शासन के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने वाले अली निम्र 10 साल बाद सऊदी अरब की जेल से रिहा हो गए हैं। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के वरिष्ठ धर्मगुरु शहीद आयतुल्ला बाकर निम्र के भतीजे अली निम्र 10 साल के बाद बुधवार को सऊदी अरब की जेल से बाहर आ गए हैं। अल निम्र को अल सऊद शासन के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों में शामिल होने की वजह से गिरफ्तार किया गया था और उन्हें मृत्युदंड की सजा भी सुना दी गई थी। मानवाधिकारों के रक्षक के नाम एक ग्रुप ने ट्विटर पर घोषणा की कि अल निम्र वर्ष 2012 से अल सऊद के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों में शामिल होने की वजह से 17 वर्ष की आयु में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद ये निश्चित माना जा रहा था कि अल निम्र को मौत की सजा जरूर मिलेगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, अल निम्र को मृत्युदंड की सजा सुना दी गई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से अभी तक उनकी मौत की सजा टलती चली आ रही थी।
तालिबान के विदेश मंत्रालय के प्रमुख ने 14 देशों के प्रतिनिधियों से भेंटवार्ता करके प्रतिबंध हटाने की गुहार लगाई है। अमीर खान मुत्तकी ने इस भेंटवार्ता में विश्व के 14 देशों के प्रतिनिधियों के साथ भेंट में तालिबान के विरुद्ध लगे प्रतिबंधों को हटाने की मांग की। कतर की राजधानी दोहा में बुधवार की रात होने वाली इस भेंटवार्ता में वैसे तो कई मुद्दों पर चर्चा की गई, किंतु मुत्तकी की ओर से तालिबान के विरुद्ध लगे प्रतिबंधों को हटाने और अमरीका में रोके गए अफगानिस्तान के पैसों को आज़ाद किए जाने पर विशेष रूप से बल दिया गया। इसी बीच तालिबान की अंतरिम सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहार बल्खी ने कहा है कि विश्व समुदाय को अमरीका पर दबाव डालना चाहिए कि वो अफगानिस्तान की विदेशी मुद्रा को काबुल को वापस करे। उन्होंने कहा कि तालिबान ने अपनी सरकार को मान्यता दिलाए जाने के बारे में शर्तों को पूरा कर लिया है।
रूस में कोरोना के संक्रमितों की संख्या एक बार फिर बहुत तेजी से बढ़ रही है। वहाँ पिछले 24 घंटों के दौरान 40,000 से अधिक नए केस सामने आए हैं। इसी दौरान रूस में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,159 रही। इन बातों को देखते हुए रूस में पाबंदियों का ऐलान करने के साथ ही अनावश्यक सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 7 अक्टूबर तक सभी गैर जरूरी सेवाओं पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इसी बीच क्रेमलिन की ओर से ये घोषणा की गई है कि इस दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी से भी भेंट नहीं करेंगे और किसी बैठक में भी भाग नहीं लेंगे। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस देश के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन पर जो हमला आरंभ कर रखा है उसमें तीव्रता आती जा रही है। अभी हाल ही में जो सर्वे हुए हैं उसके परिणाम इस बात के सूचक हैं कि बाइडेन की लोकप्रियता में काफी कमी आई है और इस स्थिति से ट्रंप काफी खुश नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ट्रंप व्हाइट हाउस में दोबारा पहुंचने का स्वप्न देखने लगे हैं। लेबनान के सूचना व प्रसारण मंत्री ने कहा है कि यमन युद्ध को तत्काल खत्म होना चाहिए। यमन के लोग विदेशी हमलों का मुकाबला कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने अंसारुल्लाह और हिजबुल्लाह का जमकर समर्थन किया।
جهد حزب الله في التحرير وفي تحرير الارض اللبنانيه وجهد الحوثي الذي يدافع عن نفسه في وجه اعتداء خارجي।
लेबनानी जनता ने उनके इस बयान का दिल खोलकर स्वागत किया है। खेल के मामले में किसी भी टीम का समर्थक होना नेचुरल बात है, परंतु जब खेल भारत और पाकिस्तान के टीमों के बीच हो तो मामला कुछ और ही हो जाता है। पिछले दिनों भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच जो क्रिकेट मैच हुआ और उसमें पाकिस्तान की टीम ने भारत की टीम को बुरी तरह हरा दिया। पाकिस्तान की जीत पर भारत के अंदर खुशी मनाई गई, जिस पर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन पर देशद्रोह का मुकदमा भी चल सकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस देश के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन पर जो हमला आरंभ कर रखा है उसमें तीव्रता आती जा रही है। अभी हाल ही में जो सर्वे हुए हैं उसके परिणाम इस बात के सूचक हैं कि बाइडेन की लोकप्रियता में काफी कमी आई है और इस स्थिति से ट्रंप काफी खुश नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ट्रंप व्हाइट हाउस में दोबारा पहुंचने का स्वप्न देखने लगे हैं। नजफ जादे की रिपोर्ट पेश करें साथ ही रविश जैदी।
ट्रंप द्वारा जो बाइडेन पर किया जाने वाला हमला हर दिन पहले से ज्यादा तीव्र होता जा रहा है। ताजा हुए सर्वे में ये बात सामने आई है कि बाइडेन की लोकप्रियता कम हुई है। वहीं ट्रंप इस स्थिति से काफी खुश नजर आ रहे हैं और फिर से व्हाइट हाउस पहुंचने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उनके साथ मीडिया नहीं है। उसके लिए भी उन्होंने एक योजना बनाई है और कुछ ही महीनों के अंदर एक सोशल मीडिया साइट को वो लॉन्च करने वाले हैं जो उनके ट्विटर और फेसबुक से निकाले जाने की भरपाई करेगा। ट्रंप के समर्थकों को भी उनसे काफी उम्मीदें हैं, लेकिन उनका विरोधी मोर्चा, ट्रंप के सबसे करीबी लोग जिनमें उनके वरिष्ठ सलाहकार स्टीव बैनन शामिल हैं, कांग्रेस के चक्कर काट रहे हैं। वहीं डेमोक्रेट्स 6 जनवरी की घटना की जिस दिन कांग्रेस पर हमला हुआ था उसे भूलने नहीं देना चाहते हैं। स्वयं बाइडेन ने इस बात की इजाजत दी है कि अमेरिका का राष्ट्रीय आर्काइव विभाग 6 जनवरी की घटना के समय के सभी वीडियो और ऑडियो, विशेषकर ट्रंप, उनके सलाहकारों और उनके परिवार वालों के बीच होने वाली बातों और संदेशों के सभी दस्तावेजों को जांच समिति के सामने पेश करे। जब अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य से ये पूछा कि जारी जांच को देखते हुए आप डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक भविष्य को किस तरह देखते हैं, उनका कहना था कि अभी इस संबंध में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। उनकी ये बात सही है कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हालिया दिनों में हुए सर्वे से पता चलता है कि कम से कम आधी अमरीकी जनता 2024 के अमरीकी चुनाव में ट्रंप के उम्मीदवार बनने पर उनका समर्थन करेगी। लेकिन अगर ट्रंप के खिलाफ जारी सभी मामले, विशेषकर 6 जनवरी को हुई घटना के केस से वो बच निकले तब। न्यूयॉर्क से IRIB के लिए कामरा नजफजादे की रिपोर्ट।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
लेबनान के सूचना व प्रसारण मंत्री ने कहा है कि यमन युद्ध को तत्काल खत्म होना चाहिए। यमन के लोग विदेशी हमलों का मुकाबला कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने अंसारुल्लाह और हिजबुल्लाह का जमकर समर्थन किया। लेबनानी जनता ने उनके इस बयान का दिल खोल कर स्वागत किया है। अजीम जादे की रिपोर्ट पेश करें साथ ही अहमद अब्बास।
जुहद हिजबुल्लाह फी तहरीर व फी तहरीर अल अर्ध लबनानी व जुहद अल हौथी लजी युदाफ़ अन नफ्सु फी वजह इतिदा खारिजी।
लेबनान के सूचना मंत्री जॉर्ज करदाही ने बेहद साहसपूर्ण बयान दे डाला। उन्होंने हिजबुल्लाह का समर्थन किया और सऊदी व इमाराती हमलों का सामना कर रहे यमनी प्रतिरोधक संगठनों का पक्ष लिया। 8 साल से यमन की जनता पर जंग थोप दी गई है। ये बकवास युद्ध तत्काल खत्म होना चाहिए। یمن کے لوگ ودیشی حملوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، انصار اللہ آندولن اپنے دیش کی رکشا کر رہا ہے، یہ لبنانی سوچنا منتری کا کہنا ہے۔ اس بیان کا لبنان کی جنتا نے دل کھول کر سواگت کیا اور دھونس کے خلاف قرداہی کا ہیش ٹیگ لبنان کے ٹاپ ٹرینڈ میں پہنچ گیا اور چاروں طرف سے ان کی تعریف میں بیان آنے لگے۔
وزیر الاعلام لبنانی،
ستھانیہ یوا کا کہنا ہے کہ سوچنا منتری نے کیول لبنانیوں کے دل کی بات نہیں کہی بلکہ پورے علاقے کی جنتا کے من کے بات کہہ دی ہے۔ یمن پر سعودی عرب اور امارات کا حملہ اور بے گناہ یمنیوں کا جن سنہار فوراً رکنا چاہیے۔
دفاع عن نفس، شعب دفاع عن نفس المسحوسین۔
امارات، بحرین اور کویت کے ودیش منتریوں نے لبنانی سوچنا منتری کے بیان پر اعتراض کیا اور ان پر حملہ کر دیا۔
تعرض لها الوزير اللبناني على خلفية موقفه،
مگر یمن کے سوچنا منتری زیف اللہ شامی نے جارج قرداہی پر ہونے والے اعتراض کی کڑی آلوچنا کی۔
الشارع اللبناني والمجتمع اللبناني،
لبنانی ناگرک کا کہنا ہے کہ ہمارے دیش کے لوگ لبنان میں سعودی عرب کے ہستکشیپ اور علاقے میں اس کے یدھ انماد سے ناراض ہیں۔ پورو ودیش منتری شیرب الوہبے نے پد پر رہتے ہوئے سعودی عرب کے ہستکشیپ کی کڑی نندا کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ سعودی عرب ہستکشیپ سے بچے اور علاقے میں ہنسا نہ پھیلائے۔ لبنان کے سوچنا منتری نے سعودی عرب اور امارات کی اور سے کیے جا رہے ہنگاموں پر کہا کہ میں نے کسی کے بارے میں کوئی غلط بیان نہیں دیا ہے اور کسی پر بے وجہ حملہ نہیں کیا ہے، میں تو بس اکارن کیے جا رہے یدھ کا ویرودھ کر رہا ہوں۔ سعودی عرب اور امارات خفیہ طور پر دباؤ ڈال کر لبنانی سوچنا منتری قرداہی کو برخاست کروانے کی کوشش میں ہیں۔ وہ کیسے ہمیں ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں کہ کون پد پر رہے اور کون پد پر نہ رہے، یہ کہنا ہے لبنانی سوچنا منتری کا۔ لبنان کی راجدھانی بیروت سے آئی آر آئی بی کے لیے حسن عظیم زادے کی رپورٹ۔
کھیل کے معاملے میں کسی بھی ٹیم کا سمرتھک ہونا نیچرل بات ہے، پرنتو جب کھیل بھارت اور پاکستان کی ٹیموں کے بیچ ہو تو معاملہ کچھ اور ہی ہو جاتا ہے۔ پچھلے دنوں بھارت اور پاکستان کی ٹیموں کے بیچ جو کرکٹ میچ ہوا اور اس میں پاکستان کی ٹیم نے بھارت کی ٹیم کو بری طرح ہرا دیا۔ پاکستان کی جیت پر بھارت کے اندر خوشی منائی گئی، جس پر کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان پر دیش دروہ کا مقدمہ بھی چل سکتا ہے۔ پوری جانکاری کے ساتھ دلی سے شمشاد کاظمی۔
کھیل میں کسی بھی ٹیم کا سمرتھک ہونا ایک سامانیہ سی بات رہی ہے، لیکن ٹیم جب پاکستان کی ہو تو بھارت میں سمویدنشیلتا بڑھ جاتی ہے، جس کا مکھ کارن بھارت اور پاکستان کے سمبندھوں میں تناؤ ہے۔ اس تناؤ کا پربھاؤ اس سمے دکھائی دیا جب ٹی ٹوینٹی وشو کپ میں بھارت پر پاکستان کی جیت ہوئی۔ اتر پردیش کے کچھ شہروں میں کچھ لوگوں نے پاکستان کی جیت کا کتھت روپ سے جشن منایا۔ سوشل میڈیا پر اس کی خبر آنے کے بعد پولیس نے اس کا سنگیان لیا اور 3 کشمیری چھاتروں سہیت کل 7 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جن پر سمودایوں کے بیچ نفرت پھیلانے جیسے گمبھیر آروپ لگائے گئے ہیں۔ اتر پردیش کے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ پاکستان کی جیت پر جشن منانے والوں پر دیش دروہ کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ آگرہ کے ایک کالج میں شکشا پراپت کر رہے انجینئرنگ کے 3 کشمیری چھاتروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن پر آروپ ہے کہ انہوں نے راشٹر ویرودھی ٹپنی بھی کی تھی۔ ان 3 چھاتروں پر دھرم اور سائبر آتنکواد کے آدھار پر سمودایوں کے بیچ دشمنی کو بڑھاوا دینے کا آروپ لگایا گیا ہے۔ اتر پردیش کے منتری سدھارتھ ناتھ نے اس سندرب میں کہا،
اس پرکار کا جشن منایا گیا، جہاں جہاں سے رپورٹ آئی ہے وہاں پہ بریلی بھی ہے، لکھنؤ بھی ہے، آگرہ بھی ہے۔ اتر پردیش سرکار نے اور پولیس نے 5 جنوں کو اس پہ ایف آئی آر درج کری ہے، اور اس پہ جو قانون کہتا ہے کہ آپ بھارت کے ہار پہ جشن منائیں اس پہ پھر کاروائی۔
مکھیہ منتری کاریالے کے ایک ٹویٹ سے سنکیت ملتا ہے کہ ان چھاتروں اور ہار پر جشن منانے والوں کو دیش دروہ کے آروپوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ 24 اکتوبر کو بھارت پاکستان کے بیچ کرکٹ ٹی ٹوینٹی وشو کپ میچ کا نتیجہ آنے کے بعد کچھ نگروں میں کتھت روپ سے پاکستان کے سمرتھن میں نعرے لگائے جانے کا سماچار ہے۔ اسی معاملے میں بدایوں، بریلی اور لکھنؤ میں بھی کل 4 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جو بتایا جاتا ہے کہ بھاجپا یووا ونگ کی شکایت پر کیا گیا ہے۔ عام لوگوں کا کہنا ہے کہ دیش بھکتی کی بھاونا ہمیں اپنے دیش کی ٹیم کی جیت پر جشن منانے کے لیے پریرت کرتی ہے، لیکن دوسرے دیش کی ٹیم کی جیت پر جشن منانے پر دیش دروہ کا قانون لگایا جا سکتا ہے اتھوا نہیں، یہ تو دیش کا قانون ہی طے کرے گا۔ مگر ٹیکہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ راجنیتک رنگ لیتا دکھ رہا ہے اور ایسی گرفتاریاں وہاں ہو رہی ہیں جہاں کچھ مہینے بعد ودھان سبھا کے چناؤ پرتیاشت ہیں۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دلی۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔ شوتاؤ، ہماری سبھا کا انتم کاریکرم ہوگا سفل مہیلائیں، پر اس سے پہلے آپ سنیے دوسرا ساپتاہک کاریکرم آج کی بات۔
آج کی بات، دوستو، کارکرم آج کی بات میں آپ کا سواگت ہے۔ رویش زیدی کا سلام سویکار کریں۔ دوستو، آج کے کارکرم میں ہم بھارت میں مسلمانوں کی آبادی کو لے کر آئے دن ہونے والے ہنگامے پر چرچا کریں گے۔ آشا کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح ہمارا آج کا یہ پریاس آپ کو پسند آئے گا۔ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ دوستو، ایک اور جہاں سامنے آئی وبھن رپورٹوں اور ادھیانوں سے پتہ چلتا ہے کہ بھارت میں پچھلے 10 ورشوں میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی آبادی بڑھنے کی رفتار میں گراوٹ آئی ہے، اور ایسا بھارت میں جن سنکھیا میں بڑھوتری کی در میں آئی کمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ جن سنکھیا کی رفتار میں آئی گراوٹ کیول ہندوؤں اور مسلمانوں میں نہیں آئی ہے، بلکہ عیسائی، سکھ، بودھ اور جین سہت انیہ سبھی سمودایوں کی جن سنکھیا وردھی کی در میں گراوٹ آئی ہے۔ بھارت میں جنگڑنا ہر 10 سال میں ہوتی ہے۔ سال 2011 میں ہوئی جنگڑنا کے مطابق ہندوؤں کی جن سنکھیا وردھی در 16.76% رہی، جبکہ 10 سال پہلے ہوئی جنگڑنا میں یہ در 19.92% پائی گئی تھی۔ وہیں اگر مسلمانوں کی جن سنکھیا میں بڑھوتری کی بات کی جائے تو اس میں زیادہ بڑی گراوٹ دیکھی گئی ہے۔ پچھلی جنگڑنا کے مطابق بھارت میں مسلمانوں کی آبادی 29.5% کی در سے بڑھ رہی تھی، جو اب گر کر 24.6% ہی ہو گئی ہے۔ بھارت کی مکھ وپکشی پارٹی کانگریس کے ورشٹھ نیتا اور پور کیندری منتری دگ وجے سنگھ بھی بھارت میں مسلمانوں کی گھٹتی ہوئی آبادی کے بارے میں ایک کاریکرم کے دوران دیے گئے اپنے بھاشن میں کہتے ہیں کہ
یہ کہتے ہیں کہ مسلمان چار سال بیوی کر لیتے ہیں، درجنوں بچے پیدا کر دیتے ہیں، اور 10 سال 20 سال بعد مسلمان بہو سنکھیک ہو جائیں گے اور ہندو الپ سنکھیک ہو جائیں گے۔ میں چنوتی دیتا ہوں، جو بھی ان سے چرچا کرنا چاہے کر لے۔ آج ایک رپورٹ آئی ہے جس میں کی سینسس رپورٹ کے آدھار پر کسی نے اسٹڈی کیا ہے، 1951 سے لے کر آج تک مسلمانوں کی جنم در جتنی تیزی سے گھٹ رہی ہے اتنی تیزی سے ہندوؤں کی جنم در نہیں گھٹی ہے، لیکن آج بھی مسلمانوں کی جنم در قریب 2.5 ہے، 2.7 ہے، اور ہندوؤں کی 2.3 ہے، یعنی کہ پریوار 2.3 کے پریوار آ جاتا ہے، 2.7۔ لیکن جس پرکار سے جن سنکھیا کی جن در گھٹ رہی ہے، 2028 تک ہندوؤں کی اور مسلمانوں کی جن در برابر ہو جائے گی 2028 تک، اور اس سمے پورے دیش میں جن سنکھیا استھر ہو جائے گی۔ جو بھی ہوگا 2028 تک بڑھوتری، اسی بات بڑھوتری نہیں ہو سکتی۔ بات یہی ہے، آج خطرہ بتا کر ہندوؤں کو بکھار کیا جاتا ہے۔
भारत में कई कट्टरपंथी विचारधारा से संबंधित राजनीतिक पार्टियां और संगठन लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि वो देश की सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू समुदाय के लोगों को भारत में मुसलमानों की कथित तौर पर बढ़ती आबादी के बारे में बताकर उनके अंदर डर और भय का माहौल पैदा कर सकें। इसी तरह ऐसे संगठनों और पार्टियों द्वारा ये भी प्रचार किया जाता है कि आने वाले वर्षों में भारत में मुसलमानों की आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि भारत एक मुस्लिम बाहुल देश बन जाएगा और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इसी संबंध में भारत के सबसे बड़े कट्टरपंथी हिंदू संगठन आरएसएस के प्रमुख का भी ताजा बयान सामने आया है। वो इस बारे में कहते हैं,
जनसंख्या वृद्धि दर में असंतुलन की चुनौती। देश में जनसंख्या नियंत्रण हेतु किए गए विविध उपायों से पिछले दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में पर्याप्त कमी आई है, लेकिन इस संबंध में अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल का मानना है कि 2011 की जनगणना के पांथिक आधार पर किए गए विश्लेषण से विविध संप्रदायों की जनसंख्या के अनुपात में जो परिवर्तन सामने आया है उसे देखते हुए जनसंख्या नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता प्रतीत होती है। विविध संप्रदायों के प्रति जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अंतर, अनवरत विदेशी घुसपैठ व मतांतरण के कारण देश की समग्र जनसंख्या विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ रहा असंतुलन देश की एकता अखंडता सांस्कृतिक पहचान के लिए गंभीर संकट का कारण बन सकता है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे में कि जब कट्टरपंथी हिंदू संगठन और उनकी विचारधारा पर चलने वाली पार्टियां पूरी तरह से इस प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं कि कैसे हिंदू समुदाय के लोगों पर ये साबित कर सकें कि भारत में तेजी से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है और वो दिन दूर नहीं है कि भारत एक मुस्लिम बहुल देश में परिवर्तित हो जाए। कहीं ना कहीं इस तरह के झूठे दावों के जरिए ये सभी कट्टरपंथी हिंदू संगठन और पार्टियां भारत की बहुसंख्यक आबादी वाले हिंदू समुदाय के दिलों में डर और भय का माहौल पैदा करना चाहती हैं। इस संबंध में भारत के पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी से जब पूछा गया कि क्या RSS प्रमुख मोहन भागवत की ये बात सच है कि भारत में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है और हिंदू आबादी कम हो रही है, तो उन्होंने इस प्रश्न के उत्तर में कहा,
जी ने जो कहा कि ये डेमोग्राफिक बैलेंस गड़बड़ हो रहा है, ये तो उन्होंने नई बात नहीं कही, ये तो 30-40 साल से एक राइट विंग कह ही रहा है और इस रिपीटेशन से कह रहा है कि जनरल लोगों के माइंड में ये चीज घर कर चुकी है कि अगर मुसलमान किसी हिंदू घर में दो बच्चे हैं तो मुसलमान के 8 या 10 होते हैं। और इस हद तक है कि मुझे भी इस बात का यकीन हो गया था, लेकिन जब मैंने ये 25 साल पहले सबसे पहले इत्तेफाक एक्सीडेंटली एक पेपर लिखा था उसमें मैंने जो डिस्कवर किया कि ये पाया कि एक्चुअली हिंदू और मुसलमान के बीच में पॉपुलेशन का गैप कभी भी एक बच्चे से ज्यादा का नहीं था, प्रिसाइजली 1.1 का गैप था, न कि 8 या 10 बच्चों का गैप था जो इम्प्रेशन दिया जाता है। अच्छा, ये फैक्ट है कि 9.8 से बढ़ के 14.2 यानी 4.4 मुसलमानों की परसेंटेज पिछले 60 साल में, पिछले 60 का मतलब ये 2011 के सेंसस तक जो आखिरी सेंसस है, और हिंदू के प्रोपोर्शन 84 से घट के 79.8, और ये जो 4.2 उनका घटा ये सारे कम्युनिटीज में बढ़ गया, मेनली मुसलमानों में ये माना। लेकिन एक चीज जो भुला दी जाती है जानबूझकर कि अगर मुसलमानों में ये माना कि मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग सबसे कम है, इसका मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के जिम्मेदार वही है, तो मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग सबसे कम है 45%, लेकिन नंबर दो पे कौन है, हिंदू 54%। तो अगर मुसलमान आबादी बढ़ा रहे हैं तो हिंदू भी आबादी बढ़ा रहे हैं, और चूंकि उनका बेस नंबर ज्यादा है वो बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। और मैंने इसमें ग्राफ भी दिया है कि अगर 1951 में जब सबसे पहले सेंसस हुआ था कि अगर मुसलमानों के मुकाबले में 30 करोड़ हिंदू ज्यादा थे, आज 80 करोड़ हिंदू ज्यादा हैं।
एस वाई कुरैशी से जब ये पूछा गया कि अगर ये मान भी लिया जाए कि भारत में मुसलमानों की आबादी हिंदुओं के मुकाबले में बढ़ रही है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि भारत में आने वाले कुछ दशकों में मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी? क्या मुसलमानों की आबादी की बढ़ने की रफ्तार इतनी तेज है कि कुछ ही दशकों में मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे? तो एस वाई कुरैशी ने इस सवाल के जवाब में कुछ इस तरह विस्तार से बताया।
नहीं, ये तो सेंसस की फिगर्स हैं। ये किसी ने कोई झूठ बोला, बार बार बोला, उसको किसी ने काउंटर ही नहीं किया, विद द रिजल्ट कि लोगों के दिमाग में ये चीज घर करती चली गई। मुझे इत्तेफाक से मौका मिला कि मैं जरा देखूं तो सही, जो इम्प्रेशन मुझे भी हो गया था कि मैं देखूं तो सही एग्जैक्टली फैक्ट क्या है। ये तो जरूर पाया कि मुसलमानों के जो बर्थ रेट है वो हाईएस्ट है, टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो एक औरत अपनी पूरी लाइफ टाइम में उसके होंगे उसको TFR कहते हैं। तो TFR मुसलमानों का हाईएस्ट है, लेकिन सेकेंड हाईएस्ट हिंदुओं का है। हिंदुओं का बेस चूंकि 80% है, उन 80% लोगों का TFR, और अब सिर्फ उस TFR में हाफ अ पॉइंट का फर्क है, 0.48 का फर्क है। तो यही वजह है कि हिंदू जो 30 करोड़ ज्यादा थे 1951 में, अब 80 करोड़ ज्यादा है। खतरा कहां से पैदा हो रहा है? उनकी तो गिनती बढ़ती चली जा रही है। और बल्कि मैंने इस पे एक मैथमेटिकल मॉडल बनवाया, प्रोफेसर दिनेश सिंह और प्रोफेसर अजय कुमार दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जो दिनेश सिंह वाइस चांसलर थे, मैंने कहा कि मैं आपको डेटा भेजता हूँ अपने 70 साल का, आप मैथमेटिकल मॉडल देख के बताइए कि कितनी जल्दी मुसलमानों का राज हो जाएगा जैसे ये लोग कह रहे हैं। तो उन्होंने मैथमेटिकल मॉडल भेजा जो किताब में एंड में पूरा एनेक्शन के बता दिया है। उन्होंने कहा भाईजान भूल जाइए, नॉट इवन फॉर 1000 ईयर्स, नेवर। 1951 में जो आबादी थी, मैं आपको उसकी एग्जैक्ट फिगर अभी तो एक मिनट में बताता हूँ, कि वो थी उस पर 9.8% थी और अब बढ़ के 14.2 हो गई है, यानी 60 साल के अरसे में 4.4% आबादी बढ़ी। 60 साल में अगर 4% बढ़ी तो 51% बनने के लिए इसको 600 साल चाहिए। अगर कुछ और चेंज ना हो, जो जिस रफ्तार से बढ़ रहा है वही चलता रहे, तो 600 साल में 51% मुसलमान होते हैं। लेकिन चूंकि मुसलमान बहुत तेजी से फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं, हिंदुओं से ज्यादा तेजी से अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसके नतीजे में जो गैप था 1.1 का, वो घट के 0.48 पे आ गया।
कुल मिलाकर ये बात हर हिसाब से साबित होती है कि भारत में किसी भी स्थिति में 1000 साल में भी इस देश के मुसलमानों की आबादी हिंदू आबादी से ज्यादा नहीं हो पाएगी। तो मुझे लगता है कि हमारे बहुसंख्यक लोगों के दिल और दिमाग में जिस तरह से इस झूठ से भय और डर बैठाया गया है, उसे उन्हें निकाल देना चाहिए, क्योंकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। साथ ही एक और बात कि भारत के मुसलमान एक वक्त में 4 शादियां करते हैं और फिर उनसे 25-25 बच्चे पैदा करते हैं, तो इस बात में भी कोई सच्चाई नहीं है। बहरहाल ये सारी बातें वास्तविकता से बहुत दूर हैं और केवल कट्टरपंथी हिंदू संगठनों और पार्टियों द्वारा भारत के हिंदू और मुसलमानों के बीच दूरी पैदा करने के लिए एक हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बल्कि अगर कट्टरपंथी हिंदू संगठन और राजनीतिक पार्टियां ये चाहती हैं कि मुसलमानों की आबादी में कमी आए, तो उन्हें मुस्लिम समुदाय, विशेषकर मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के समर्थन में अभियान चलाना चाहिए, उनकी नौकरियों के लिए अभियान चलाना चाहिए, और इससे उनके दिल में बैठा झूठा डर भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उनके अनुसार फिर मुसलमान शिक्षा और नौकरी पर ध्यान देगा, आबादी बढ़ाने पर नहीं। तो तथा कथित राष्ट्रवादियों को मुसलमानों की शिक्षा और रोजगार के लिए विशेष अभियान शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, हमारे कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त हो रहा है। हमें उम्मीद है कि हमारा कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا۔ تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے۔ اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کارکرم۔
سفل مہیلائیں۔ دوستو، کارکرم سپل مہلائیں کی ایک انیہ کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہردادی اور سید میسم کا سلام سویکار کیجیے۔ اس کارکرم میں ہم وبھن کھیتروں میں سفلتا کے جھنڈے گاڑنے والی ایرانی مہیلاؤں سے آپ کا پریچے کرواتے ہیں۔ آج ہم ایران کی سب سے تیز دھاوک کی چرچا کریں گے۔
ایران کی سب سے تیز مہیلا دھاوک نے استانبول انڈور ٹریک اور فیلڈ پرتیوگتاؤں میں پہلا استھان حاصل کیا اور ایران کے راشٹریہ ریکارڈ میں بھی سدھار کیا۔ یہ سفلتا زائندے روت کی رہنے والی ایرانی لڑکی نے کڑی محنت سے حاصل کی ہے۔ استانبول انٹرنیشنل کپ کے لیے ایران کی دھاوک چیمپئن فرزانہ فصیحی کو آمنترت کیا گیا تھا۔ انہوں نے 25 بہمن کو 60 میٹر بادھا دوڑ میں قزاقستان کی اولگا جیسی مہان ایشیائی دھاوکوں کے ساتھ پرتیوگتا میں شاندار پردرشن کیا۔ انہوں نے 7.25 سیکنڈ میں یہ ریکارڈ قائم کرنے میں سفلتا حاصل کی۔
فسی نے اس سے پہلے سربیا میں 60 میٹر کے انتراشٹریہ پرتیوگتاؤں میں 7.29 سیکنڈ میں ایران کی اور سے یہ ریکارڈ بنایا تھا۔ اس بار بھی انہوں نے یہ نیا ریکارڈ ثابت کر کے اپنی کشمتا کا لوہا منوایا۔ انہوں نے سربیائی راجدھانی بیلگریڈ میں 7.29 سیکنڈ کا سمے درج کر کے وشو ایتھلیٹک چیمپئن شپ کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔ ایران کی سب سے تیز دھاوک نے نہ کیول ایران کا 60 میٹر ریکارڈ توڑا بلکہ اس میں پھر سے پھیر بدل کیا اور پہلی بار ورلڈ انڈور چیمپئن شپ میں حصہ لینے کے لیے کوالیفائی کیا۔ فرزانہ فصیح ایران کی مہیلا راشٹریہ ریسنگ ٹیم کی سدسیہ اور دھاوک ہیں۔ انہوں نے 2016 میں 4x400 میٹر ایشیائی انڈور ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے 7ویں دور میں رجت پدک جیتا اور 2018 میں ایشیائی انڈور ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے 8ویں دور میں 60 میٹر ورگ میں کانسی پدک جیتا۔
اس پرکار فصیحی کو اب اگلے مہینے چین میں ہونے والی ایشیائی انڈور چیمپئن شپ کے لیے کوالیفائی کرنے کی آوشیکتا نہیں ہے کیونکہ وہ ورتمان میں ایرانی مہیلاؤں کی اور سے وشو انڈور چیمپئن شپ میں پہلی اور ایک ماتر کھلاڑی ہیں۔ ایشیائی انڈور پرتیوگتاؤں میں اپنے ریکارڈ کو دہراتے ہوئے وہ ایشیا میں سب سے تیز ایرانی دھاوک کا خطاب جیت سکتی ہیں، سورن پدک کے لیے لڑ سکتی ہیں۔ آج ایرانی مہیلائیں ابھرتے ہوئے پیشیور سمودائے کا پرتنیدھتو کر رہی ہیں اور انہوں نے کاریوں، ساماجک معاملوں اور کھیل میں اچھ پدوں پر پہنچنے کے لیے اپنا راستہ کھول لیا ہے۔ حالیہ ورشوں میں ایرانی مہیلاؤں نے انتراشٹری اور گھریلو کھیل پرتیوگتاؤں میں مہتوپورن اپلبدھیاں حاصل کی ہیں۔ انتراشٹری اور گھریلو کھیل آیوجنوں میں ایرانی مہیلاؤں کی سفلتا کی کہانیوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ گھر اور سماج دونوں میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں کیسے سفل رہی ہیں۔ انتراشٹریہ آیوجنوں میں مہیلاؤں کے لیے ایسی سمبھاونائیں اتپن کی گئی ہیں کہ وہ ایک بار پھر سماجک کھیتر میں چمک سکتی ہیں और साबित कर सकती हैं कि उनमें काफ़ी योग्यताएं और क्षमताएं मौजूद हैं। पिछले साल दक्षिण कोरिया में आयोजित होने वाले एशियाई खेलों में ईरानी लड़कियों ने उस समय से भी बेहतर प्रदर्शन किया जब ईरान ने खेलों की मेजबानी की थी।
ईरानी रिकॉर्ड धारक धावक बेलग्रेड में कुछ महीने बिताने के बाद तेहरान वापस लौटी, जिनका एयरपोर्ट पर अधिकारियों और परिवारों के सदस्यों ने स्वागत किया। उनका कहना है कि सब कुछ ठीक था और मुझे उम्मीद है कि ये आगे भी जारी रहेगा। हमने साबित कर दिया कि ईरानी लड़कियां बहुत सक्षम हैं और उच्चतम बिंदु तक पहुंचने की क्षमता रखती हैं। हमारे पास कुछ भी कम नहीं है, सिर्फ हमें अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाने की जरूरत है। स्पीड रेस एक प्रकार की रेस है जिसमें कम दूरी को अंतिम संभव गति से तय किया जाता है। 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर स्पीड रेस वाली प्रतियोगिताएं हैं, जिन्हें आज ओलंपिक और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आयोजित किया जाता है। फ्रांसीसी इस प्रकार की रेस को बहुत ही रोमांचक करार देती हैं और कहती हैं ये प्रतियोगिता टाइम की वजह से बहुत ही रोमांचक प्रतियोगिता बन जाती है। आप अपने समय को ही कम करते हैं और रिकॉर्ड बनाते हैं, इससे आपका उत्साह और रोमांच और बढ़ जाता है। आप हर दिन धावा बोलते हैं और रिकॉर्ड तोड़ते हैं। असली प्रतिद्वंदी स्टॉपवॉच और एक सेकंड का 100वां हिस्सा होता है, हकीकत में एक भयंकर प्रतिद्वंदी है।
फरजाना फसीही फिजिकल एजुकेशन में एमए के आखिरी सेमेस्टर में है। उन्होंने कोच बनने के सभी चरणों को तय कर लिया है और विवाह भी कर लिया है। उन्होंने 27 साल की उम्र में ईरान में रेसिंग में खुद को उस सतह पर पहुंचा दिया है कि स्पीड रेस में कोई उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। उनके लिए ये बात कोई महत्व नहीं रखती है कि उन्हें क्या कहकर पुकारा जाता है, हवा से बातें करने वाली लड़की या तेज दौड़ने वाली हिरनी। वो गर्व से अपना परिचय फरजाना फसीही के रूप में ही करवाती हैं। सर्बिया से मिले प्रस्ताव के बाद वो एक ईरानी लीजन फौज की पहली बेटी बनने की राह पर हैं। उनका कहना है, मैंने अचानक रेस प्रतियोगिता में भाग लिया था उस वक्त जब मेरी उम्र कम थी और मैं स्कूल जाती थी। प्रतिभाओं को नहीं पहचाना जाता था। स्कूल में आयोजित होने वाली एक प्रतियोगिता में मैंने कहूं तो जबरन हिस्सा लिया था। हमारी खेल टीचर ने मुझसे कहा कि प्रतियोगिता में भाग लो और आखिर तक पूरी ताकत से दौड़ो। मैंने कहा कि मुझे ये खेल पसंद नहीं है क्योंकि मैं बहुत जल्दी हांफने लगती हूं। इसके बावजूद टीचर के आग्रह पर मैंने प्रतियोगिता में भाग लिया। उस प्रतियोगिता में मैं पहले नंबर पर आई और इस्फहान के स्कूलों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। हालांकि इससे पहले मेरी एक खेल पृष्ठभूमि थी क्योंकि मैं 6 साल की उम्र से जिम्नास्टिक में काम कर रही थी और बहुत जल्दी टीम की सदस्य बन गई थी।
फरजाना फजी आगे कहती हैं, मैंने जो भी योजना बनाई थी उसे पूरा किया है। मैंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है और वैश्विक रिकॉर्ड को हासिल किया है। निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतना कठिन काम है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। पिछले विश्व कप में खिलाड़ी मेरे इस रिकॉर्ड के साथ फाइनल में पहुंचे थे। मेरी कोशिश है कि वैश्विक स्तर पर एक अच्छी दौड़ के साथ दुनिया में अपना नाम रोशन करूं। देखना होगा कि प्रतियोगिता में क्या होता है। ईरान की ये युवा खिलाड़ी अपनी कुछ सफलताओं का श्रेय अपने पति को देती है। उनका कहना है कि हर अवसर पर उनके पति ने उनका भरपूर समर्थन किया है। इस संदर्भ में उनके पति का कहना है कि ये फरजाना हैं जो मैदान के बीच में ट्रैक पर दौड़ती हैं और कीर्तिमान स्थापित करती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब भी कोई बड़ी घटना घटती है तो दसियों और सैकड़ों लोग एक दूसरे के हाथ में हाथ डालते हैं और उसमें भूमिका निभाते हैं। इसलिए एक सफलता को किसी एक आदमी से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। फरजाना का एक दयालु और मेहनती परिवार है जिसने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया है। उनके साथ उनके कई मित्र रहे हैं जिनकी वजह से उन्होंने सफलता हासिल की है। मुझे आशा है कि वो आगे भी सफल होती रहेंगी।
समाज में और वैज्ञानिक पदों पर ईरानी मुस्लिम महिलाओं की मूल्यवान उपस्थिति इस्लामी क्रांति की महत्वपूर्ण उपलब्धियों से एक है। नैतिकता और हिजाब का ख्याल रखते हुए ज्ञान और जागरूकता ईरान के इस्लामी समाज में महिलाओं की प्रगति की कुंजी है, जिसे हम इस्लामी क्रांति के संस्थापक इमाम खुमैनी की देन मानते हैं। इमाम खुमैनी ने इस संस्कृति की समाज में बुनियाद रखी। महिलाएं समाज में एक प्रभावशाली तत्व हैं और उन्हें देश की बुनियादी नियति में शामिल होना चाहिए। सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनाई ने भी इस आंदोलन को जारी रखा है। उनका कहना है कि किसी भी स्वस्थ मानव समाज में महिलाएं सक्षम होती हैं और उन्हें वैज्ञानिक और सामाजिक प्रगति और निर्माण में प्रतिस्पर्धा करने और इस दुनिया की कमान संभालने का अवसर मिलना चाहिए। इसी के साथ कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। हमें अनुमति दीजिए।
दोस्तों, ये था कार्यक्रम सफल महिलाएं, जिसे पेश किया सैयद मीसम और मरियम मेहर दादी ने। कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस बारे में आप हमें ज़रूर बताएं। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। हमारे कार्यक्रमों को आप वेबसाइट पर अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं, partstoday.com/hi। अपनी प्रतिक्रियाओं को आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, hindi@wsiribir। तो इसी के साथ हमारी ये सभा संपन्न होती है। आपसे अनुमति चाहते हैं। शुभ रात्रि। खुदा हाफिज़।